एंड नेवर फॉरगेट कृष्ण।
और मानव समाज का भी उद्देश्य यही है कि ऐसा जीवन बिताना कि हम दूसरे को प्रेरणा दे सकें कि हमेशा श्री कृष्ण का स्मरण करें और श्री कृष्ण को कभी नहीं भूलें।
The only real friend we have is that person which brings us closer to God.
हमारा सच्चा मित्र वही है जो हमें भगवान के करीब ले आ सके।
So wonderful
events like we are participating tonight are the most important factor of our society, to come together to sing the names of God and hear His glories.
तो आज जिस तरह से हम उत्सव में एकत्र होकर भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं और भगवान के गुण गा रहे हैं, यही वास्तव में जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है।
This process alone can give bring people together in a spirit of service and love.
यही एक तरीका है जिससे लोग एक सेवा भावना में और प्रेम में एकत्रित हो सकते हैं।
And those great souls who really are well wishers are always inviting us to come closer to that association
where God's glories are being chanted.
और जो महात्मा पुरुष हैं वो हमेशा हमें निमंत्रण देते हैं कि ऐसे स्थान में हम आए जहां भगवान के गुणगान हो रहे हों।
So really we have come this evening in gratefulness and honor of one wonderful devotee who lived amongst you, Rajesh. He has left this world on the order of Krishna for a higher service, but he has left behind many fortunate souls who have been inspired to dedicate their lives in God's service.
तो हम यहाँ विशेष आज एकत्रित इसलिए हुए हैं कि आपके ही जो बीच में जो एक व्यक्ति थे जो अभी भगवान की ज्यादा उच्च सेवा करने के लिए उनकी आज्ञा से चले गए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को छोड़ा है कि जो हमें और प्रेरित कर सकें भगवान की सेवा में।
And for such wonderful personalities who bring us closer to Krishna, we are all eternally indebted.
और ऐसे जो व्यक्ति हैं राजेश की तरह जो हमें भगवान के करीब लाते हैं उनके प्रति हम हमेशा ऋणी रहते हैं।
You see, in this world, people are mad chasing after wealth.
इस दुनिया में लोग पागल हैं पैसे के पीछे।
People are very much frightened of poverty.
लोग गरीबी से डरते हैं।
But unfortunately, we do not know what real wealth and real poverty is.
लेकिन दुर्भाग्यवश हमें जानते नहीं हैं कि सच्चा धन क्या है और सच्चा गरीबी क्या है।
We find sadhus who sleep on river bank, who beg for food, and they are the most blissful people in the whole world.
हम देखते हैं कोई साधु जो हैं वैसे सोए हैं और कोई भिक्षा मांगते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति वही हैं।
And similarly, we find great, great multimillionaires who have one big, big factories, tremendous power over millions of people's lives, and they're so miserable they cannot sleep without sleeping pills. They go to psychiatrists, and they are always frustrated for more.
हम ऐसे भी अमीर व्यक्ति देखते हैं जो बड़े फैक्ट्री वाले होते हैं, लाखों के होते हैं, लेकिन उनको रात में ठीक से नींद भी नहीं आती और इसके लिए वो जो मनोवैज्ञानिक के पास दवा के लिए जाते हैं।
So real wealth and real poverty have very little to do with our physical proximity, but the condition of our heart.
तो सच्ची गरीबी और सच्ची अमीरी जो है वो भौतिक अवस्था पर निर्भर न करके हमारे हृदय की स्थिति पर निर्भर करती है।
If a person has found God's love within one's heart, one is truly the greatest wealthy person in all the world.
अगर किसी ने भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया है तो वास्तव में वही दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है।
And that person gives the charity of that love to everyone he meets. He is really the supreme most well-wisher and charitable person in the world.
और जो ये भगवान प्रेम का दान सबको देता है वही दुनिया में सबसे बड़ा धनी और सबसे बड़ा हितैषी है।
But a person, even if he is rich, influential and powerful, if he does not have God's love, his heart is lonely. His heart is in a impoverished condition.
अगर व्यक्ति के पास बहुत धन सामग्री भी है लेकिन अगर उसको भगवान का प्रेम नहीं है तो उसका हृदय जो है गरीब है और वो दुखी है।
99% of this world, the people's hearts are in poverty.
तो 99% लोगों का हृदय जो है वो गरीबी में है.
And therefore, no matter what arrangements they make, they find no happiness.
चाहे वो क्या इंतजाम कर लें, लेकिन सुख प्राप्त नहीं कर पाते.
There is a story that when Lord Sri Krishna was living in this world in Vrindavan, one time he was just a small child and he was playing with his friends.
एक बार ऐसी कथा है कि जब भगवान श्री कृष्ण छोटे बालक थे, अपने मित्रों के संग खेल रहे थे.
At that time, a lady came to Vrindavan selling nice fruits.
उसने वृंदावन में एक स्त्री आई जो कि बहुत सुंदर फल बेच रही थी.
She had a big, big basket full of fruits, and she was sitting down on the side of the road calling, "If anyone wants to buy my fruits, please come, I will sell them."
वो उसके पास एक बड़ी टोकरी थी जिसमें कि फल थे, और वो सड़क किनारे बैठकर बोल रही थी कि अगर किसी को कोई फल चाहिए हो तो मेरे पास आ जाए.
At this time, little Gopal, he wanted to eat some nice fruits.
तो उस समय जो बाल गोपाल थे उनको फल खाने की इच्छा हुई.
So he went to his house and he picked up a handful of grains.
तो अपने घर में गए और मुट्ठी में थोड़ा सा अनाज ले आए.
You see, in those days, in the villages like Vrindavan, there was no money. People would trade grains or milk products in order to purchase something.
उस समय वृंदावन जैसे गांव में धन नहीं होता था, लेकिन एक चीज को देकर दूसरी चीज प्राप्त करते थे.
So little Gopal, he was only a child, very small. He used to see his mother giving grains to buy other things.
तो बाल गोपाल छोटे से बालक थे, उन्होंने देखा था कि उसकी माँ जो है अनाज देकर दूसरी चीजें ग्रहण करती थी.
Imitating his mother, he filled his tiny little hand with as many grains as he could hold.
तो अपनी माँ का नकल करते हुए उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी में जितना अनाज आता था वो भर लिया उन्होंने.
And with great enthusiasm and joy, he began to run toward the fruit vendor.
और बड़े खुशी से और बड़े उत्साह से वो फल वाली की तरफ दौड़ने लगे.
But as he was running, because his hands were those of a tiny child, the grains were falling out, and by the time he came to the fruit vendor, there was only one or two little pieces of grain in his hand.
लेकिन क्योंकि वो छोटे बालक थे और भाग रहे थे तो सारे अनाज गिर रहे थे उंगलियों के बीच में से, और जब तक वो फल वाली के पास पहुंचे खाली एक दो दाने बच गए.
And he said, "I want to buy fruits with this."
और वो बोले कि मैं इससे जो फल खरीदना चाहता हूँ.
And the fruit vendor looked at such beautiful lotus-like eyes, such a wonderful bluish complexion, such a charming and loving smile. Her heart began to melt in divine love.
तो इतना सुंदर रूप, इतनी सुंदर आंखें देखकर उसका हृदय पिघलने लगा प्रेम से.
She did not care that this child was offering her something that was worth nothing. She simply wanted to make him happy.
उसने ये नहीं सोचा कि ये बालक जो दे रहा है तो कुछ नहीं है. वो सिर्फ बालक को प्रसन्न करना चाहती थी.
So she said, "You take as many fruits as you can hold." And she started putting more, one after another, more and more fruit until his arms were just filled with mountain of fruits.
तो उसने कहा जितने फल चाहिए ले लो, और एक एक करके दो दो करके बहुत सारे उसको फल देने लगे, और यहाँ तक कि उसका पूरा जो हाथ है वो पर्वत से भर गया फलों के.
And she was so happy just to see him smile.
और भगवान को मुस्कुराते हुए देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गई.
And Lord Sri Krishna, Gopal, was so happy he ran home to share the fruits with his mother and his friends.
और बाल गोपाल इतने प्रसन्न हुए कि अपने माँ बाप के पास ले गए ये फल बांटने के लिए.
At that time, the fruit vendor turned around and her basket, it was filled with the most precious jewels.
और उसके बाद फल वाली ने पीछे मुड़के अपनी टोकरी देखी तो उसमें सबसे ज्यादा जो कीमती हीरे जवाहरात हो गए थे.
You see, wealth is not how much we take, but real wealth in life is how much we are able to give in love.
सच्ची धन ये नहीं है कि हम कितना ग्रहण करते हैं, लेकिन सच्चा धन ये है कि कितना हम दूसरों को देना चाहते हैं.
It is not a question of physically how much we have to give, but it is a question of how much our heart wants to give.
ये इसका मतलब ये नहीं है कि चाहे क्या कितना हम दे सकते हैं भौतिक रूप में, लेकिन कितना हमारा हृदय बड़ा है देने के लिए.
You know the story that in Ramayana,
Hanuman was building a big bridge over the Indian Ocean, tearing off big mountain peaks and putting them on the water.
आप लोगों को कथा मालूम होगी कि रामायण में हनुमान जी और सब वानर मिलकर ब्रिज बना रहे थे और हनुमान जी बड़े बड़े पर्वत लेकर पानी में फेंक रहे थे.
While he was doing this great, great work, there was a tiny little squirrel taking little pieces of dirt and putting them on the ocean.
जब वो इतना बड़ा कार्य कर रहे थे पास में एक छोटी सी जो है ग्लहरी थी जो कि थोड़े थोड़े जो है कण धूल के फेंक रही थी.
And Hanuman ji saw the squirrel getting in his way and he said, "Get out of my way, you worthless creature."
तो जब हनुमान जी देखा गिलहरी रास्ते में आ रही है तो उसने कहा कि निकलो मेरे मार्ग से तुम हट जाओ यहाँ से.
And Lord Sri Ramchandra ji, he looked at Hanuman and said, "Do not talk like this. He is doing as much seva as you."
तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा तुम ऐसा मत बोलो जितनी सेवा तुम कर रहे हो उतना ये भी कर रही है.
This little squirrel is doing everything within his power to give in my service, and you are doing everything within your power to give in my service. I only see the love and the devotion.
रामचंद्र जी बोले कि जितना जितना उसकी क्षमता है वो कर रहा है और जितना तुम्हारी क्षमता तुम कर रहे हो मैं तो सिर्फ प्रेम और भक्ति ही देखता हूँ.
This is real wealth.
यही सच्ची संपत्ति है.
The wealth of love.
प्रेम की संपत्ति.
And the want, the willingness to give that love to Krishna and to all those things that are dear to Krishna.
और ये धन देने के लिए तैयार रहना कि कृष्ण को और जो सब जो कृष्ण के प्रिय हैं उनको.
Sometimes we think of charity as giving to the poor.
कभी हम सोचते हैं कि दान का मतलब है कि गरीबों को कुछ बांटना.
And that is true.
और वो भी सत्य है.
But usually the poor in this world are more rich spiritually than the rich.
लेकिन अधिकतर समय जो दुनिया के गरीब लोग होते हैं वो आध्यात्मिक रूप से ज्यादा अमीर होते हैं.
Because they are humble.
क्योंकि
and they can easily turn to God in a humble spirit, in a humble state of mind.
क्योंकि वो नम्र होते हैं और इस नम्र भाव में भगवान की तरफ वो मुड़ सकते हैं.
Because after all, the purpose of life is to find pleasure and satisfaction within our hearts and to share that with others.
वास्तव में जीवन का उद्देश्य है कि अपने हृदय में संतुष्टि और आनंद प्राप्त करना और वो दूसरों के साथ बांटना.
So how to invest our time in developing that wealth?
तो हम अपना समय कैसे बिताएं इस संपत्ति को विकसित करने के लिए?
It is very simple.
ये बहुत सरल है.
By associating with people who have that wealth.
ऐसे लोगों का संग करिए जिनके पास यह संपत्ति है.
By being in the company of saintly people,
साधु पुरुषों के संग में रहिए.
And in their company, to learn the process of chanting God's names.
और उनके संग में यह सीखिए कि कैसे भगवान के नामों को पुकारा जाए.
When we chant the name of God, we are invoking the Supreme Lord within our heart.
जब हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं तो हम अपने हृदय के भगवान को पुकार रहे हैं.
Lord Narayan is Lakshmi Nath. He is the Lord of the goddess of fortune, Lakshmi.
Narayan jo hai wo Lakshmi Nath hai, yani Lakshmi ke pati hai.
All beauty, all knowledge, all wealth, all fame, all the wonders of the world are all contained within God's name.
Duniya ki sabse sundarta, sabse adbhut cheez, sabse sampatti jo hai Bhagwan ke naam mein aa jati hai.
Therefore, there is no greater activity in all of the creation than sincerely coming together to chant the name of God.
तो इसीलिए पूरी सृष्टि में इससे बढ़कर और कोई अच्छा कार्य नहीं है कि एकत्र होकर भगवान का नाम कीर्तन करें.
This not only awakens real peace within our own hearts, but creates a genuine peaceful situation within the world.
न केवल हमारे हृदय में शांति होती है बल्कि पूरी दुनिया में यह शांति फैल जाती है.
And it is so joyful.
और ये कितना आनंददायक है.
Lord Chaitanya, who is Krishna himself, who appeared in this world very recently, he has taught us this process of raising our arms, dancing together, and singing Krishna's names.
श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे अपने हाथ ऊपर करके नृत्य करते हुए भगवान का नाम कीर्तन करें.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
This chanting of God's name is so sublime. It is so wonderful. It is the vehicle which can transport our consciousness to the spiritual world, even in this very life.
ये भगवान के नाम कीर्तन का तरीका कितना दिव्य है, कितना अद्भुत है. ये एक साधन है जिसके द्वारा इसी जीवन में हमारी चेतना जो है भगवत धाम में प्रवेश कर सकती है.
Just yesterday, day before yesterday, I was speaking with one of the most wealthy Indians in all the world.
अभी परसों ही महाराज जी दुनिया के भारत के सबसे बड़े एक अमीर व्यक्ति से बात कर रहे थे.
He told me a story about perhaps the wealthiest family of Indians in the entire world.
वो ऐसे एक व्यक्ति की कहानी बता रहे थे जो शायद भारत के या दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं.
They have billions of dollars, hundreds and thousands of people working under them, and so much influence.
उनके पास करोड़ों डॉलर हैं और हजारों लोग उनके अंदर काम करते हैं.
But recently the son was so frustrated, even though he had all these things, that he committed suicide.
लेकिन इतना सब होने के बावजूद उनका लड़का दुखी था और उसने आत्महत्या कर ली.
Such a person with all this wealth and all this position to be so much suffering, one is willing to kill him, his own self. We cannot imagine what type of pain his life must have been in his mind.
तो हम सोच सकते हैं इतने संपत्ति के बावजूद उसने आत्महत्या की. हम कभी विचार ही नहीं कर सकते कि कितना दुख उसके हृदय में रहा होगा.
And because he has done this, it brought so much suffering and sorrow to all of the family members.
क्योंकि उन्होंने ऐसा किया उसके सारे परिवार के जन भी बहुत दुखी हो गए.
So this friend of mine was telling me that what is the use of all of these billions of dollars? Because it cannot bring their son back.
वो व्यक्ति कह रहे थे कि अरबों डॉलर का क्या फायदा, उनका पुत्र को तो वापस नहीं दिया जा सकता.
And it cannot relieve, even for a second, the pain and sorrow that they are feeling because he is gone.
और उसके जाने से जो दुख उनके हृदय में प्रकट हो रहा है वो पैसे से दूर नहीं हो सकता.
So what is the use of all this money?
इस सारे धन संपत्ति का क्या लाभ?
It cannot relieve their suffering and it cannot bring them any happiness.
न तो उनका दुख दूर कर सकता है न उनको आनंद दे सकता है.
And ultimately, their destiny is beyond the control.
और अंततः उनका गंतव्य स्थान जो है वो तो उनके हाथ में नहीं है.
So what is real wealth?
तो सच्ची संपत्ति क्या है?
Real wealth is what we gain from the name of God.
सच्ची संपत्ति वही है जो हमें भगवान के नाम से प्राप्त होती है.
It brings us peace,
जो हमें शांति प्रदान करती है.
Satisfaction,
संतुष्टि देती है.
And love,
और प्रेम देती है.
And nothing in this world can disturb that.
और दुनिया की कोई भी चीज उसको निकाल नहीं सकती.
The Bhagavad Gita explains, just like an ocean is so full and so deep that no matter how much it rains or no matter how much there is a drought, it cannot affect the ocean.
भगवद गीता में बताया गया कि जो सागर होता है उतना गहरा होता है, चाहे वो कितनी बरसात हो लेकिन सागर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता.
A small lake of water or pond during the dry season dries to nothing, and during the rainy season overfloods.
छोटा सरोवर होता है वो गर्मी में बिल्कुल सूख जाता है और जब बहुत बरसात होती है तो बाढ़ सी आ जाती है उसमें.
But the ocean is completely indifferent to all the changes of weather.
तो लेकिन जो सागर है वो ऋतु के बदलने पर भी वो बिल्कुल उदासीन रहता है.
Because the ocean is so full in itself.
क्योंकि सागर अपने आप में ही पूर्ण है.
Similarly, our heart, within it is an ocean, the ocean of God's love.
उसी तरह से हमारे हृदय में भगवान के प्रेम का सागर है.
But we have forgotten that ocean and we are concentrating on all the little ponds of material arrangements that bring us satisfaction in life.
लेकिन हम इस हृदय के सागर को भूल गए हैं और इस संसार के संतुष्टि में ही हम जो सरोवर में आनंद लेना चाहते हैं.
And sometimes circumstances beyond our control just fill that little pond of our material attachments and make it overflow with a sense of happiness.
कभी कभी ये भौतिक आसक्ति के जो है हमारे सरोवर को भर देती हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम सुखी हो गए हैं.
And sometimes circumstances beyond our control
dry it to nothing.
और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो पूरा सुखा देते हैं कि कुछ नहीं बच जाता.
Therefore, an intelligent person becomes indifferent to these little ponds of our material attachment and focuses his attention on the unlimited supreme ocean of love and bliss that is within our hearts.
इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति है ये सरोवर जो है भौतिक आसक्ति के उनकी तरफ ध्यान न देकर हमारे हृदय में जो प्रेम का सागर है उस तरफ ध्यान देता है.
In that condition, we can be transcendental. We can be blissful in any situation of life.
ऐसी स्थिति में होने पर हम जिस भी स्थिति में हों हम बहुत आनंददायक रह सकते हैं.
And the greatest thing is we can give that bliss to others.
और उसी तरह से हम दूसरों को भी वो आनंद बांट सकते हैं.
The chanting of God's name, the association of saintly persons, is the ways and the means by which we can dive deeply into that ocean of divine consciousness within us.
भगवान के नाम का जप और भगवान के भक्तों का संग यही एक साधन है जिसके द्वारा हम उस सागर में डुबकी लगा सकते हैं.
Therefore our Guru Maharaj used to say, just chant Hare Krishna and be happy.
इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे कि हरे कृष्णा कीर्तन करो और आनंद में रहो.
It is a fact. We are all looking for happiness. The key to open the door to unlimited happiness is the holy name of God.
ये सत्य है कि हम सब आनंद की खोज में हैं और इस आनंद में प्रवेश करने की चाबी है भगवान का नाम.
The conclusion of all the great scriptures and all the teachings of the greatest scholars and pundits throughout history is that simply by chanting God's name, all knowledge and all realization of God's love can be understood and experienced.
सभी शास्त्रों और आचार्यों का यह कहना है कि भगवान के नाम कीर्तन करने से जो है सारा ज्ञान और सारा भगवान का प्रेम का अनुभव हो सकता है.
So although these beautiful, bright-faced children are having such a wonderful time dancing and singing, it is not simply a form of entertainment, but it is the highest process of self-realization.
तो हालांकि ये बच्चे जो हैं बड़े आनंददायक रूप से जो है खुशी से कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे हैं ये केवल मनोरंजन ही नहीं है बल्कि आत्म साक्षात्कार की सबसे श्रेष्ठ विधि है.
The Vedic scriptures explain that what is attainable in Satya Yuga by 60,000 years of performing celibacy, fasting, giving up sleep and sitting in one place with one's eyes closed in dhyan, in fixed meditation, samadhi, is available in this age of Kali by simply dancing in ecstasy and chanting Krishna's names.
ऐसा बताया जाता है कि जो सत्ययुग में व्रत ब्रह्मचार्य पालन करते हुए ध्यान करने में जो 60,000 साल के बाद जो फल मिलता है वही फल सिर्फ भगवान का नाम प्रेम से कीर्तन करते हुए और नृत्य करने से प्राप्त हो सकता है.
What is available previously by performing the Ashwamedha Yajna, the Gomedha Yajna, the Rajasuya Yajna, big sacrifices, big fire homa, and wonderful Brahmins chanting thousands and millions of mantras. What is available through such elaborate, wealthy sacrifices, millions of them do not equal to one kirtan of the holy name.
और जो फल राजस्वीय यज्ञ अश्वमेधा यज्ञ और इन सब यज्ञों से मिलता है उससे भी ज्यादा और जो है ब्राह्मणों के जो अच्छी तरह से उच्चारण करने पे जो यज्ञ का फल मिलता है वो भी कभी भगवान के एक कीर्तन के बराबर नहीं हो सकता.
कली कले नाम रूपे कृष्णा अवतार.
कलयुग में भगवान का नाम कीर्तन होता
है. That in this age of Kali Yuga, God has descended in his name.
इस कलयुग में भगवान ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है.
And Lord Chaitanya Mahaprabhu has taught us that there is no greater fortune and benediction than what is available through the chanting of Krishna's name.
Shri Chaitanya Mahaprabhu ne hame ye sikhaya hai ki bhagwan ke naam kirtan se badhkar na koi saubhagya hai aur na hi koi aashirwad hai.
So if we are serious in really solving the problems of suffering and be going beyond birth and death, we must take to this simple formula.
अगर हम गंभीर हैं कि जन्म मृत्यु से परे जाने के लिए और दुनिया की समस्याओं का हल करने के लिए तो हमें इस तरीके को अपनाना चाहिए.
What is the formula?
और ये क्या तरीका है?
We must give up our sinful activities, which are headed by illicit sex, intoxication, gambling, and meat eating.
हमें ये सब जो बुरे कार्य हैं वो त्याग देने चाहिए, जैसे कि अवैध स्त्री संग, जुआ खेलना, मांस खेलना, मांस खाना और शराब पीना.
We must associate with serious spiritual people.
हमें गंभीर जो आध्यात्मिक लोग हैं उनका संग करना चाहिए.
We must learn from them.
और हमें उससे सीखना चाहिए.
And we must come together to sing Krishna's names.
और हमें एकत्रित होकर श्री कृष्ण के नाम कीर्तन करना चाहिए.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे.
हरे
हरे
कृष्णा
कृष्णा
हरे
हरे
कृष्णा
सब बोलो
कृष्णा
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 हरे
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 राम
राम
हरे
हरे
राम
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 हरे
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 हरे.
तभी सब लोग कीर्तन करें.